शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 24 जून है, मम्मा का 61वां स्मृति दिवस, 61st स्मृति दिवस। आज के ही दिन 1965 में मम्मा ने देह त्यागा था और अव्यक्त वतनवासी बनी थी। हम मम्मा को कैसे भूल सकते हैं? माँ को तो भूल ही नहीं सकता है वैसे भी कोई। मम्मा की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, विशेषताएं तो बहुत थी, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता थी मम्मा जो मुरली सुनाती थी उसमें कितनी सरलता थी। बाबा की मुरली तो सागर की लहरें थी, कभी ये पॉइंट कभी वो पॉइंट, हाँ जैसे सागर की लहरें, कभी यहां से कभी वहां से, क्योंकि वहां तो ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा थे, वो तो सागर थे, लेकिन मम्मा तो सरस्वती गुप्त नदी। लेकिन मम्मा की मुरलियां गहरी भी थी, पर जितनी ही गहरी थी उतनी ही बहुत सिंपल भी थी। और मम्मा हर पॉइंट का विस्तार करती थी, हर पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनाती थी। जैसे माँ होती है छोटे बच्चे को भोजन जब देती है तो सख्त भोजन नहीं देती है, नरम नरम। छोटे बच्चे को दांत भी नहीं होते हैं लेकिन उसके मुंह में डालती है। एक चिड़िया भी ऐसे करती है उनकी बच्चों को, वो ले आती है भोजन, उसको नरम करके फिर उनके मुंह में डालती है। तो मम्मा भी ऐसे ही थी, बाबा की गहरी गहरी बातें बहुत सरल करके मम्मा समझाती थी। तो आज हम सब मम्मा की मुरली सुनेंगे। वैसे तो मम्मा की ये मुरली बहुत लंबी है, हो सकता है कुछ मुरलियों को मिलाया हो। और लास्ट में एक प्रश्न किसी ने पूछा है मम्मा से, तो उस प्रश्न का जो उत्तर मम्मा ने दिया है वो भी बहुत गहरा है। तो सुनते हैं मम्मा के महावाक्य और फिर मुरली के बाद मम्मा का गीत भी होगा, मम्मा की आवाज भी हम सुनेंगे। सबने आवाज तो सुनी होगी, किसने मम्मा की आवाज नहीं सुनी है हाथ उठाएं। अच्छा, कभी मम्मा की आवाज नहीं सुनी है? अच्छा, इतने हाथ उठा रहे हैं। तो मम्मा की आवाज भी आपको सुनाई जाएगी, फिर भोग भी लगेगा मम्मा बाबा को। तो और फिर उसके बाद आप सभी को फ्रूट्स का पैकेट आया है, खास शांति वन से बना हुआ, बन करके आया कल रात को, तो आपको आंगन में मिलेगा। यहाँ से आप उठेंगे और आंगन में आपको वो फ्रूट का पैकेट मिलेगा। इसलिए आज जो भट्टी वाले उनके लिए फोटो सेशन नहीं होगा, वैसे भी नहीं हो सकता है, और यहाँ सामान रखा हुआ है सीढ़ियों के पास, इसलिए फोटो सेशन नहीं होगा। तो अभी अब सुनते हैं मम्मा के महावाक्य। आज 24/6/2026 है और ये जो मुरली मम्मा की चली है उसमें तारीख का तो नहीं पता, क्योंकि हो सकता है कई मुरलियों से लिया हो, लेकिन 1957 की मुरली है। 1957, आप सोचो कितना समय हो गया। उस समय मुरली मम्मा ने चलाई थी और सचमुच कितनी प्रासंगिक है, चाहे 57 में चलाई थी लेकिन वो इस समय कईयों के मन में जो उलझन होती है वो मम्मा ने क्लियर किया इस मुरली में। सुनते हैं बाबा मम्मा के माँ वाक्य। हेडिंग है, इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है। सिद्ध होता है कर्म से कोई बच नहीं सकता कर्म क्षेत्र पर। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है। तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है लेकिन कर्म योगी बनना है। कर्म सन्यासी तो कोई बन ही नहीं सकता है, इसलिए कर्म छोड़ना नहीं है लेकिन कर्म योगी बनना है। गीता में भी आता है कर्म सन्यास से कर्म योग सन्यास श्रेष्ठ है। तो कर्म भी करना है, परमात्मा की याद में भी रहना है और विकारों का सन्यास करना है। ये है कर्म योग सन्यास। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है। तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है लेकिन कर्म योगी बनना है। जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए उनके द्वारा उचारे हुए मधुर महावाक्य। ओम शांति। यह सृष्टि कर्म का खेत है जहां हरेक मनुष्य आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। यह सृष्टि कर्म का खेल है, कर्म का खेत है जहां हरेक मनुष्य आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। इस मुरली में कई इंग्लिश शब्द है, हो सकता है कि मुरली में मम्मा की मुरली में कोई विदेशी भी बैठे हो या कुछ ऐसा हो, तो मम्मा ने इंग्लिश शब्द भी बहुत यूज किए हैं क्योंकि मम्मा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी तो इसीलिए इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोलती थी। मम्मा ने इंग्लिश शब्द बहुत यूज किए हैं। ये सृष्टि कर्म का खेत है जहां हरेक मनुष्य आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। इसमें परमात्मा का भी पार्ट है लेकिन वो आत्माओं के सदृश जन्म मरण में नहीं आते हैं। इसलिए मुझे लिबरेटर बंधन से छुड़ाने वाला गति सदगति दाता कहते हैं। आत्मा पर माया का जो बंधन जड़ा है, करो कैसे आत्मा पर माया का बंधन जड़ा है उसे उतार कर प्योर बनाते हैं और कहते हैं कि मेरा काम है से छुड़ा करके वापस ले जाना। तो सृष्टि के जो अनादि नियम और कायदे हैं उन्हें भी समझना है। सृष्टि के कई अनादि नियम और कायदे हैं, इसलिए मम्मा अभी वो भी समझाती है, उन्हें भी समझना है। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह से होती है, फिर वो टाइम भी आता है, पहले तो वृद्धि होती जाती, फिर वो टाइम भी आता है जब ये कम भी होती है। कम कैसे होती है, विनाश में कम हो जाती है, फिर ये कम होती है। ऐसे नहीं कि बढ़ती है तो बढ़ती जाती है, नहीं, कम भी होती है। तो सृष्टि में हर चीज का नियम है। अभी इतनी वृद्धि हो गई है तो फिर आखिर कम तो होगी ना, कहाँ तक बढ़ती जाएगी। तो इसलिए मामा कहती है तो सृष्टि में हर चीज का नियम है। अपने शरीर का भी नियम है, शरीर का भी नियम है। क्या है शरीर का नियम? पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध। तो वृद्ध भी जल्दी नहीं, ऐसे नहीं बच्चा पैदा हुआ और एकदम बूढ़ा हो जाएगा, समय अनुसार धीरे धीरे। तो मम्मा कहती है तो वृद्ध भी जल्दी नहीं, वृद्ध होते होते जर्जरी हो जाते हैं, जर्जरी भूत हो जाते हैं। तो हर बात का बढ़ना और उसका अंत होना ये भी नियम है। हर चीज का आरंभ होना, फिर बढ़ना, फिर अंत होना, ये भी मम्मा कहती ये नियम है। इसी तरह से सृष्टि की जेनरेशन का भी नियम है। जो भी रचना है, आत्माएं आती जाती है सृष्टि मंच पर, ये जेनरेशन का भी नियम है। एक जीवन की भी स्टेजेस है, एक जीवन की भी स्टेजेस है, तो फिर जन्मों की भी स्टेजेस है। सत्युग में सतोप्रधान जन्म, फिर धीरे धीरे रजो, फिर तो देखो तमो। तो एक जीवन की भी स्टेजेस है, तो फिर जन्मों की भी स्टेजेस है, फिर जेनरेशन भी जो चली, वंशावली भी जो आई, फिर जेनरेशन भी जो चली उसकी भी स्टेजेस है। इसी तरह सभी धर्मों की भी स्टेजेस है। अब तो सभी धर्म कैसे तब सब तमोप्रधान स्थिति को प्राप्त है। इसी तरह सभी धर्मों की भी स्टेजेस है। पहला जो धर्म था, कौन सा था पहला धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहला जो धर्म है वो सबसे ताकत वाला है, इसलिए सनातन धर्म को कोई भी हिला नहीं सका, वो सबसे ताकत वाला है। पीछे आहिस्ते आहिस्ते जो आते हैं उनकी ताकत कम होती जाती है। तो धर्मों का बटना, धर्मों का चलना, हरेक बात नियमों से चलती है। इन सब बातों को भी समझना है। मम्मा गहराई में ले जा करके फिर मम्मा क्या कहती, इन सब बातों को समझना है। इसी हिसाब से बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाप, कि मेरा भी इसमें पार्ट है। सबका तो पार्ट है, धर्मों का भी पार्ट है, आत्माओं का भी पार्ट है। तो परमात्मा कहते मेरा भी पार्ट है, मैं भी एक सोल हूं, शिव बाबा भी एक सोल है, आत्मा है, मैं गॉड कोई दूसरी चीज नहीं हूं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत कुछ हूं, एकदम कोई ऐसा हूं जो डरावना हूं। मैं गॉड कोई दूसरी चीज नहीं हूं, मैं भी सोल ही हूं, मैं भी एक आत्मा ही हूं, परंतु मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है, इसलिए मुझे गॉड कहते हैं। गॉड माना जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, जीओडी। तो ये काम तो केवल भगवान का ही है, इसलिए मुझे गॉड कहते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी वैसा ही हूं। जैसे आपका बच्चा है, सिंपल उदाहरण मम्मा देती है, जैसे आपका बच्चा है, वो भी तो मनुष्य है। आप मनुष्य है तो आपका बच्चा भी मनुष्य है, आप भी तो मनुष्य हो, उसमें तो कोई फर्क नहीं है ना, मनुष्य का बच्चा मनुष्य। तो मैं भी आत्मा ही हूं, आत्मा आत्मा में कोई फर्क नहीं है। आत्मा भी ज्योति बिंदु है, तो परमात्मा भी एक आत्मा, वो भी ज्योति बिंदु है, साइज में तो कोई फर्क नहीं है। मैं भी आत्मा ही हूं, आत्मा आत्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं भी आत्मा हूं, लेकिन कैसी आत्मा हूं, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है। परम आत्मा, परम माना उनका सब कुछ परम, ज्ञान में परम, गुणों में परम, कर्तव्यों में परम, स्थान में परम, सब परम, ऊंचे से ऊंचा, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है। इसलिए कहते हैं मेरा जो कर्तव्य है वो सबसे भिन्न है। मैं कोई हद के एक धर्म का स्थापक नहीं हूं। जो देवी देवता धर्म की स्थापना होती है वो कोई वास्तव में एक धर्म की बात नहीं है, कोई शाखा नहीं है जो निकल आती है, लेकिन वो तो जड़ों से ही थुर बन जाता है, वो तो सारे झाड़ का आधार है। इसलिए मामा कहती है मेरा जो मैं कोई हद के एक धर्म का स्थापक नहीं हूँ। इसलिए बाबा भी कहते हैं ना, तुम पूर्वज हो, तुम पूज्य हो, सभी धर्मों के लिए भी तुम पूर्वज और पूज्य हो, क्योंकि तुम आधार हो। तो एक धर्म का स्थापक नहीं हूँ मैं, तो दुनिया का क्रिएटर हूँ। वो हो गए धर्म के क्रिएटर, वो जो धर्म पिताएं आते वो धर्म के क्रिएटर। जैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती है, सृष्टि को थमाने में मदद करती है वो धर्म पिताओं की आत्माएं, वैसे मैं भी अपने समय पर आता हूँ। मेरा कर्तव्य विशाल है, मेरा कर्तव्य महान है और सबसे निराला है। विशाल है, महान है और निराला है। इसलिए कहते हैं भगवान के लिए क्या कहते हैं, तेरे काम निराले। हम तो बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन भगवान के मन में तो कुछ और ही है, इसीलिए तेरे काम निराले। उनको सर्वशक्तिवान भी कहते हैं। सबसे शक्तिशाली काम कौन सा है? सर्वशक्तिवान तो सबसे शक्तिशाली काम कौन सा है? आत्माओं को माया के बंधनों से छुड़ाना, ये सबसे शक्तिशाली काम है। और दूसरा काम कौन सा शक्तिशाली? और नई दुनिया का सैपलिंग लगाना। हाँ, ये दो बहुत बड़े काम है भगवान के, माया के बंधनों से छुड़ाना और नई दुनिया का सैपलिंग लगाना। इसलिए उनको अंग्रेजी में कहते हैं हेवनली गॉड फादर। अब मम्मा ने इसका विस्तार किया है, हेवनली गॉड फादर। क्रिश्चियन धर्म में भगवान को हेवनली गॉड फादर, गॉड द फादर, हेवनली गॉड फादर कहते हैं। लेकिन वो किस रूप से कहते हैं? वो समझते हैं भगवान हेवन में रहता है। मुझे यहाँ, मैं तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, मुंबई की हूँ, तो हम लोग रोज स्कूल में जब थे ना तो जो प्रेयर्स करते थे वो भी उसी अनुसार, वो प्रेयर्स क्या थी, आ फादर विच आर्ट इन हेवन, हमारे पिता जो हेवन में रहते हैं। तो वो समझते हैं भगवान हेवन में रहते हैं। आ फादर विच आर्ट इन हेवन, हैलोड बी दाई नेम, आपका नाम इतना पवित्र है, हैलोड बी दाई नेम ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। जैसे स्वर्ग में आपका नाम इतना पवित्र है वैसे धरती पर भी इतना पवित्र हो, ऐसी प्रार्थना हम करते थे। तो इसीलिए वो क्रिश्चियन धर्म वाले भगवान को हेवन में मानते हैं। परंतु हेवन और फिर पैराडाइज कहते हैं, तो वो पैराडाइज इस सृष्टि पर और हेवन समझते हैं भगवान का घर। परम धाम और हेवन को अलग नहीं मानते, हम तो यही कहते हैं ना, हेवन सृष्टि पर है। तो देखो मम्मा ने उसको कैसे स्पष्ट किया है। अंग्रेजी में कहते हैं हेवनली गॉड फादर, जैसे क्राइस्ट को कहेंगे क्रिश्चियनिटी का फादर, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। क्रिश्चियनिटी का फादर जरूर है पर हेवनली गॉड फादर तो एक परमात्मा है। और जिसको क्राइस्ट ने भी कहा आ फादर विच आर्ट इन हेवन, आ फादर, तो गॉड को फादर का, गॉड इज लाइट ये कहा। तो क्राइस्ट ने भी परमात्मा को लाइट ही माना। तो जैसे क्राइस्ट को कहेंगे क्रिश्चियनिटी का फादर, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। हेवन का स्थापक तो परमात्मा है, हेवन का स्थापक परमात्मा है। तो हेवन वर्ल्ड हो गई ना, हेवन की स्थापना परमात्मा करते तो हेवन भी एक दुनिया है ना, हेवन कोई एक धर्म नहीं है। तो वो वर्ल्ड का स्थापक हो गया और उस वर्ल्ड में एक धर्म एक राज्य होगा, तत्व आदि सब चेंज हो जाएंगे। इसलिए उनको कहते हैं हेवनली गॉड फादर। दूसरा, अब दूसरी बात मम्मा सुना रही है, गॉड को ट्रुथ भी कहते हैं, गॉड इज ट्रुथ। आजकल उसको थोड़ा बदल भी दिया, ट्रुथ इज गॉड ऐसे भी कहती है, ट्रुथ इज गॉड, जहां सच है वहां ईश्वर है। पर वास्तव में जो क्राइस्ट ने कहा गॉड इज ट्रुथ, तो ट्रुथ कहा तो वो मम्मा उसका अर्थ बताती है, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, तो ट्रुथ क्या चीज है, ट्रुथ माना सत्य, तो ट्रुथ क्या चीज है, किसने ट्रुथ किसने सत्य, ये भी समझने की बात है। कई समझते हैं कि जो सच बोलता है वही गॉड है, जो सच बोलता है वही गॉड है, मनुष्य सच भी तो बोलते हैं ना, तो वही जैसे वही गॉड है, वही भगवान है, कोई और चीज नहीं है, गॉड कोई और चीज नहीं है, पर सच बोलना चाहिए वही गॉड है, उसी को गॉड मानो, ये मनुष्य समझते हैं। परंतु मम्मा कहती है नहीं, गॉड इज ट्रुथ का मतलब क्या है, गॉड इज ट्रुथ का मतलब ही है कि गॉड ने ही आकर के सभी बातों की सच्चाई बताई है, सत्य बताया है भगवान ने, क्योंकि आज दुनिया में असत्य बहुत है, तो भगवान आकर सत्य बताते हैं, इसीलिए गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। तो गॉड ही आकर के सभी बातों की सच्चाई बताते हैं, गॉड इज ट्रुथ माना गॉड ही ट्रुथ बतलाते हैं, सत्य बतलाते हैं, उनकी बातों में ही सच्चाई है। कल भी देखो बाबा ने कहा ना कि जो भगवान हमें ज्ञान देते हैं, कोई ऋषि मुनि आदि वो भी नहीं जानते, क्योंकि वो सत्य है, तो सत्य इसी समय परमात्मा आकर के सुनाते हैं, उसमें ही सच्चाई है, तब तो उनको नॉलेजफुल कहते हैं, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस, गॉड नोज, ये ईश्वर जानता है। कोई क्रिश्चियनिटी में तो ये बहुत कहते हैं, कोई बात समझ में नहीं आती है ना तो कहेंगे गॉड नोज, गॉड नोज, भारत में कहेंगे भगवान जाने, कोई कि सच है झूठ है, तो हम लोग कहते हैं ना भगवान जाने सच है या झूठ है, तो भगवान जाने, तो क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं गॉड नोज, भगवान जाने। तो मम्मा कहती है गॉड नोज माना ईश्वर जानता है, तो जरूर अगर ईश्वर जानता है तो जरूर कुछ विशेष बात जानता होगा ना, विशेष कुछ जानने की बात है ना, तो वो कौन सी जानकारी है जो भगवान के पास ही है और किसी के पास नहीं है। ये नहीं कि इसने चोरी की तो गॉड नोस, अब फलाने ने चोरी की या नहीं की भगवान जानता है, भगवान ने इसको देखा है तो भगवान जानता है, तो इसीलिए गॉड नोस, भले वो जानता सब कुछ है, सब कुछ जानता है, परंतु उसकी महिमा जो है ना वो इसी पर है कि हमारी दुनिया जो नीचे गिरी है वो ऊंची कैसे चढ़े, इस चक्र की बातों को वो जानता है, ये है गॉड नोस, भगवान जानता है, इसीलिए कहते हैं गॉड नोस। तो परमात्मा की महिमा उस तरीके से आती है जो मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि उनका जानना सबसे भिन्न है, मनुष्य का जानना हद है, कहते भी हैं मनुष्य अल्पज्ञ है, और परमात्मा के लिए कहते हैं वो सर्वज्ञ है, परमात्मा के परिचय में ये सब बातें सुनाते हैं, तो परमात्मा के लिए कहते हैं वो सर्वज्ञ है, जिसको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते हैं, यानी सर्व का ज्ञाता अथवा सब कुछ जानने वाला। तो जो सर्वज्ञ है वो ट्रुथ को जान सकता है, यथार्थ बात की नॉलेज जिसके पास होगी जरूर वो ही सबको देगा ना, और तो कोई नहीं देगा, जिसके पास यथार्थ नॉलेज होगी वही सत्य वही आकर सबको बताएगा, वही सबको देगा ना, अगर खुद जाने दूसरों को न दे तो उसमें हमको क्या फायदा। अब वो सब कुछ जानता है, पर जरूर है जो जानता है वो हमको बताएगा ना, अगर वो बताएगा ही नहीं किसी को, केवल अपने पास ही रखेगा तो हमको क्या फायदा होगा उसे, हमको फायदा तब होगा जब वो आकर के वो सत्य बताए, उसके जानकारी से हमें कोई फायदा मिला है तब तो हम उनको हम उनकी क्वालिफिकेशन गाते हैं कि वो जानी जाननहार है, ज्ञान का सागर है, उसके पीछे पड़ते हैं, भगवान के पीछे पड़ते हैं, कभी कुछ भी होता है तो कहते हैं ना हे भगवान, कैसे पीछे पड़ते हैं भगवान के, कोई भी बात हो गई, कोई समस्या आ गई, हे भगवान, तो वैसे भगवान के पीछे पड़ते हैं कि तुम ही आके मदद करोगे। कुछ भी होता है तो कहते हैं, हे भगवान अभी तू ये कर, मेरे से तो नहीं होगा, अभी तू ये कर, खैर कर, रहम कर, मेरा दुख दूर कर। तो हम उससे मांगते हैं ना, उससे कुछ संबंध है ना। अब मांगते तो जरूर हमारा कुछ संबंध है उनसे, अगर हमारा कोई संबंध ही नहीं है तो हम क्यों उनसे मांगेंगे। तो जरूर उनसे कुछ संबंध है ना, इसीलिए उस तरीके से याद करते हैं जैसे उसने हमारे ऊपर कोई एहसान किया है, उस हिसाब से हम उसको याद करते हैं। अगर कभी एहसान किया ही नहीं होता तो हम क्यों उसके लिए माथा कुटी करते हैं, क्यों उसको इतना याद करते हैं, अगर कभी भगवान ने हमारे ऊपर एहसान ही नहीं किया होता। जब कोई मुसीबत के समय मदद करता है तो दिल में आता है ना कि इसने बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की थी, मदद की थी, तो उसको याद करते हैं। समय पर मेरी रक्षा की थी तो उसके प्रति दिल में प्रेम रहता है। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है कि उसने हमारी समय पर मदद की है। परंतु ऐसे नहीं, समय पर मदद की है भगवान ने इसीलिए अंदर दिल से भगवान की याद आती है, परंतु ऐसे नहीं कि कभी कोई मनुष्य का अच्छा हो गया तो कहेंगे भगवान ने किया। बस भगवान ऐसे ही करता है, लेकिन उसका बड़ा काम है, उसका बड़ा काम है, छोटे छोटे काम के लिए वो नहीं है, बहुत बड़ा काम है उनका भगवान का। कौन सा? लेकिन उसका बड़ा काम है, वर्ल्ड का काम है, दुनिया का काम है। अभी कोई राष्ट्रपति के पास जाए या प्रधानमंत्री के पास जाए और उसको छोटा सा काम बोले कि हमारे घर के जो का जो नलका है ना, वो जरा वो उसका पानी बहुत बहता। अभी प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी कहना होता है, वो तो जाके प्लम्बर को बोलो, प्लम्बर का वो काम है, ये प्रधानमंत्री का काम थोड़ी है ना। उनका काम तो बड़ा ही होगा ना, जो जितना बड़ा औहदा है। तो भगवान का काम छोटी छोटी बातों में नहीं है, लेकिन उसका बड़ा काम है, वर्ल्ड का काम है, दुनिया के संबंध की बात है। बाकी ऐसे नहीं किसी को थोड़ा पैसा मिल गया ये भगवान ने किया, ये तो हम भी अच्छे कर्म करते हैं, ऐसे थोड़ी हम अच्छे नहीं कर्म करते हैं, हम भी अच्छे कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल मिलता है। लेकिन अगर हम समझते हैं ये भगवान ने दिया तो ये भगवान के प्रति प्रेम है, बाकी है तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब, उसका भी हम पाते रहते हैं। तो उस कर्म का फल मिलता है, अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब चलता है, उसका भी हम पाते रहते हैं। लेकिन परमात्मा ने आकर के जो कर्म सिखाया उसका जो फल है वो अलग है, उसका जो फल है वो अलग है, जो परमात्मा ने कर्म सिखाया है। अल्पकाल का सुख तो बुद्धि के आधार पर भी मिलता है, परंतु उसने जो नॉलेज दी उससे हम सदा सुख पाते हैं। तो परमात्मा का काम भिन्न हो गया ना, इसलिए कहते हैं कि मैं ही आकर के कर्म की जो यथार्थ नॉलेज है वो सिखाता हूँ। जिसको कहा जाता है, जिसके लिए क्या कहते हैं, कर्म योग श्रेष्ठ है। इसमें कर्म को घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है, कर्म योग में कर्म को या गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ तुम अपने कर्मों को पवित्र कैसे बनाओ उसकी नॉलेज मैं बतलाता हूँ। तो कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं है। कर्म तो अनादि चीज है, ये कर्म क्षेत्र भी अनादि है, मनुष्य है तो कर्म भी है, परंतु उस कर्म को तुम श्रेष्ठ कैसे बनाओ वो आकर के सिखाता हूँ, मामा कहती है, जिससे फिर तुम्हारे कर्म का खाता अकर्म हो जाता है। अभी जो कर्म श्रेष्ठ भगवान सिखाते हैं वो सुकर्म बनते हैं, फिर भविष्य में वही सुकर्म अकर्म बन जाते हैं। तो कर्म का खाता अकर्म रहता है। अकर्म का मतलब है कोई बुरा खाता नहीं बनता। तो बाप कहते हैं, मैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आता हूँ। मम्मा क्या कहती है, छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश है ना, इस कोई साकारी दुनिया में कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आता हूँ। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। मम्मा कहती है, भगवान कहते हैं जितना टाइम मैं हूँ उतना टाइम तो ख्याल करो। हाँ, क्या ख्याल करो, बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो। बाबा के बने हो तो इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रालप्त बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी हॉलिडे नहीं लेनी है, कोई भी हॉलिडे नहीं, अभी इतनी मेहनत करनी है, फिर परीक्षा देनी है, और फिर हाँ सत्युग में तो हॉलिडे हॉलिडे ही है, वहाँ तो हॉलिडे ही है, छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ। तो मम्मा कहती है, तो तुम्हारी ऐसी प्रालब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके, कैसे भी करके माना मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। ऐसी मेहनत करो मर मिट करके, भले तुमको कितनी मारे मिले लेकिन तुम पवित्रता का को भंग नहीं करो। मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं, देखो मम्मा कितना स्पष्ट कहती, कितना बिल्कुल शक्ति रूप बन करके। तो बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं, तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए ये मेहनत करो। जो बाबा हमें कहते हैं वो करो, थोड़े टाइम के लिए मेहनत करो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ, तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में तो ये मेहनत कुछ है ही नहीं। भगवान इतना हमें देता है, दो युग तक देता ही रहेगा, तो उसकी भेंट में संगम पर थोड़ी सी मेहनत कोई मेहनत है ही नहीं। ऐसे नहीं सिर्फ कहते रहो कि ये करूंगा वो करूंगा। हाँ, बाबा भी कहते ना गे नहीं करूंगा, ये गे नहीं करो। तो ऐसे नहीं कह रहे, ऐसे कहते रहो ये करूंगा वो करूंगा, दुनिया क्या कहेगी। फिर ये भी कहते हैं करूंगा तो सही, लेकिन फिर दुनिया क्या कहेगी, वो क्या कहेंगे, लोक लाज बुद्धि में आती है, दुनिया क्या कहेगी वो क्या कहेंगे। अब देखो मम्मा क्या कहती है, अरे दुनिया क्या भी कहे, दुनिया का काम है बोलना, दुनिया क्या भी कहे छोड़ दो इसे, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। हम दुनिया क्या कहेगी यही सोचना है क्या, दुनिया कुछ भी कहे छोड़ दो इसे, अभी ये दुनिया ही जाने वाली है, इसलिए दुनिया के पीछे नहीं पड़ो, दुनिया क्या कहेगी लोग क्या कहेंगे तो खत्म ही होने वाले हैं ये सब। हाँ, दुनिया ही जाने वाली है, अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो ना, विस्तार करते जा रहे हो, विस्तार अपनी जो प्रॉपर्टी को बढ़ा रहे हो, ये बढ़ा रहे हो वो कर रहे हो। तो मम्मा कहती इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो ये सब वेस्ट कर रहे हो। देखो इतनी बड़ी बात मम्मा कहती, सब वेस्ट कर रहे हो, सब खत्म होना है। इसीलिए कहा ना कल भी भट्टी वालों को यही कहा, छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, फंसना तो बिल्कुल नहीं है पर छोड़ना भी नहीं है, निभाना है, नया नहीं जोड़ना है। ये चार शब्द है, फंसना नहीं, छोड़ना नहीं, नया जोड़ना नहीं, नया नहीं जोड़ना है, बस निभाना है, ये चार बातें हैं। तो बाबा, तो मामा कहती है अभी बाप कहते हैं ये सब वेस्ट कर रहे हो, अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ, वो जो समय देते हो कुछ नया 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 जोड़ते रहते हो उस समय को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है, बच्चों को पालना है, परिवार चलाना है, तो वो हिसाब किताब है, उसके लिए उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा, ये थोड़ी कि बाबा मैं तो आके यहाँ रहूंगा, मेरे बच्चों बच्चे भी आप ही संभालो, तो बाबा क्यों संभालेगा, रचना आपने रची है तो आपको ही संभालना है। मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तुमको ही संभालना है, जो जरूरी है वो तो तुमको फ्री करता हूँ, ये भले वो करो, लेकिन अभी ये जो एक्स्ट्रा रच रहे हो ना, ज्यादा बढ़ाते जा रहे हो, ये एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ बाबा, उसके लिए मना करते हैं, क्योंकि अभी वो तो गिरना ही है, क्योंकि अपना फालतू समय क्यों अपना फालतू समय गंवा रहे हो, इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। किससे दुखी हुए, फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो, उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तुमको बतलाता हूँ। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना, हाँ बहाने लगाना, ये कहाँ की देती है बहानेबाजी, बाबा भी कहते ना बहानेबाजी में बड़े होशियार है बच्चे, तो ये कहाँ की देती है बहाने लगाना। फिर बाप भी कहते हैं, अब देखो मामा धर्मराज के शब्द बोल रही है, फिर बाप भी कहते हैं देख लेना, क्या देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूंगा, अब नाक पकड़ के तुमको ले चलूंगा, नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, किसी का नाक पकड़ो तो उसका दम घुटता है ना, तो नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है, हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है, अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी आ जाएगा मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना, है ना। और कोई चीज को तो पकड़ नहीं सकते, कान भी थोड़ा पीछे है, नाक तो एकदम आगे है तो वो तो फट से पकड़ लेंगे, तो मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, जब नाक हाथ में आ गया तो उस समय फिर कुछ नहीं हो सकेगा, न कुछ कर सकेंगे। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अब तुम मेरे हो करके, मेरे पास आ करके, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उसके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। दादी जानकी जी भी कहती थी, बाबा कहते ट्रिब्यूनल बैठेगा और ट्रिब्यूनल में मैं बैठूंगी, दादी जानकी कहती थी, ट्रिब्यूनल होता ना वो अंत में वो बेंच होती है, तो वो सारे जजेस डिसाइड करते हैं, वो ट्रिब्यूनल होता है, तो वो जजों में एक जज तो दादी जानकी भी होगी ना, तो मैं भी देख लूंगी। तो मम्मा कहती है मेरे पास आ करके, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं है उसकी तो बात ही अलग है, अब उनको तो पता ही नहीं है तो उनकी सजा तो एक गुना ही होगी, क्योंकि पता ही नहीं है। हाँ छोटा बच्चा अगर करेगा तो उसकी सजा कोई बड़े जितनी थोड़ी होती है, उसको पता ही नहीं है। लेकिन हाँ ब्राह्मणों के लिए तो और भी कड़ी सजा है, मम्मा ने तो फिर भी 10 गुना कही और बाबा तो 100 गुना कहते। तो मम्मा कहते इसीलिए जिन विचारों को पता ही नहीं है उनकी बात तो अलग है, बाकी जिनों को पता है जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की तो उनकी तो खैर नहीं, खैर नहीं, उनको क्या सजा मिलेगी। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 100 गुना नुकसान भी होगा, बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, तो उनका फायदा भी करोड़ों में होता है और अगर नुकसान होता है वो भी करोड़ों में होता है। जो छोटे मोटे होते हैं उनका तो नुकसान चलो 100 में होगा तो फायदा भी 100 में होगा, पर बड़े बिजनेसमैन का सब बड़ा बड़ा होता है। तो ब्राह्मण तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो हमारा फायदा भी 100 गुना तो नुकसान भी 100 गुना, तो मम्मा तो फिर भी 10 गुना कहती है। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा, तब कहते हैं अपने नुकसान को घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। मम्मा कहती है अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो, अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। शिव शक्ति थी ना मम्मा, तो बिल्कुल शक्ति रूप होकर के मम्मा सुनाती है, अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी, तो इन सभी बातों को समझो भूलो मत। अभी ये जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है, इसलिए जिसमें अभी ये धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। अगर बाबा का संग पूरा नहीं लिया तो माया का संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो ईविल सी नो ईविल टॉक नो ईविल, कई ऐसे ईविल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं है, ऐसी कई बुरी बातें हैं जो यहाँ भी बच्चों को छोड़ती नहीं है। फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं तो कहते हैं माँ बाबा कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। मम्मा कहती है ऐसे संग दोष से बचे रहो, ऐसे मत समझो कि संग दोष तो बाहर है यहाँ नहीं है। अब ये भी देखो ऐसे नहीं कि मधुबन में नहीं मिलेगा संग दोष, यहाँ भी मिल सकता है। कई बातें तो हम लोगों को पता ही नहीं होती और बाहर वालों को पता होती है, वो भी होता है, तो संग दोष यहाँ भी मिल हो सकता है। तो कहते ऐसे संग दोष से बचे रहो, ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है यहाँ नहीं है, नहीं यहाँ भी वो घूमते रहते हैं। कौन घूमते रहते हैं? माया के दोस्त यहाँ भी घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना, वो यहाँ भी आ जाते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो, यहाँ भी कोई आ जाएगा आतंकवादी कहीं शूट कर ले, कवच पहन के रखो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं, योग का ही कवच है। कौन सा कवच है यहाँ? योग का ही कवच है और ज्ञान की तलवार है। अगर माया का कोई आ जाए तो उसको ज्ञान की तलवार से मारो। इन सभी अस्त्रों शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो, योग का कवच, ज्ञान की तलवार, योग की ढाल या ड्रामा की ढाल और योग का कवच संभाल के रखो अस्त्र शस्त्र। कहते भी हैं जो करता है वो पाता है, ये तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बात है, यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, खाओ पियो मौज करो केवल यही तो नहीं करना है ना, तो ये प्रारब्ध हो जाएगी, फिर जो पुरुषार्थ है जो सेवा है उसकी कमाई है वो तो खत्म हो जाएगी, खाली खाया पिया और सोया। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, यहाँ तो कोई गुरु बन करके तो नहीं बैठना है ना, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड न करे, इसलिए ये सब समझाया जाता है। तो ये सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है, यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होती है। अभी ये सब खर्चा जो भी तुम्हारे पास धन संपत्ति है, ये सब खर्चा दूसरों के कल्याण अर्थ ही यूज करना है, सेवा के लिए ही यूज करना है, एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे खबरदार रहने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अभी कोई मुरली से लिया होगा, एक प्रश्न किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते हैं। ये सबका प्रश्न होता है ना, हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते हैं। तो मम्मा ने उत्तर दिया है, वास्तव में अपनी ये लाइफ नेचुरल योग की ही होनी चाहिए, क्योंकि योग है निश्चय। अब निश्चय है हमें बाबा में, तो हमारा जीवन ही योग का होना चाहिए, क्योंकि योग है निश्चय। तो हर दम निश्चय को कायम रख प्रैक्टिकल वो स्वरूप बन जाना है। निश्चय रूप बन कर्म इंद्रियों से कर्म करो, भले स्थूल कर्म इंद्रियां कोई भी कार्य करती रहे, मगर खुद को उसी सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रहना है। आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे, कोई भी अशुभ संकल्प विकल्प न रहे, ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था में रहो, तो फिर कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। शुद्ध प्योर धरणी में जो भी संकल्प उत्पन्न होगा वो लोक संग्रह अर्थ, लोक संग्रह प्रति अथवा अपनी उन्नति प्रति ही होगा। ये अति मीठी सुंदर अवस्था है जो समय पर मदद करती है। ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने का अब ही गोल्डन चांस तुम्हें मिला हुआ है, तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करो। जब हम योग में बैठते हैं तो अंदर में मंत्र पूजा जप आदि कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कोई अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं, माला जपते हैं, मूर्ति को सामने रख फूल चढ़ाते हैं, वो सब कुछ अंदर ही अंदर करते हैं। वो कहते हैं वो सब जो कुछ वो बाहर करते हैं, हम अंदर ही अंदर करते हैं, जिसको मनसा पूजा कहेंगे। हम मनसा पूजा अंदर ही अंदर करते हैं, लेकिन हमारे योग में हम सिर्फ अपने स्वस्वरूप में स्थित हो सुख स्वरूप बन जाते हैं। अपने मन सहित सभी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर एकाग्र चित बन ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते हैं। इसके लिए योग का टाइम पर्सनल मुकरर है, जहाँ एक टाइम पर बैठकर अभ्यास करते हैं। सिर्फ व्यक्त बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना है, तो याद सहज हो जाएगी। वही सच्चा कर्म योग होगा, कर्म भी कर रहे हैं याद में भी है, तो याद सहज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। वरदान, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो ऐसे बाप को साथी बनाओ, तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू शुरू का जो वायदा है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो, तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो साथी को साथ रखो, साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति को परिस्थितियों पर प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। यह व्यक्ति सारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ के अंतर्गत अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन तीन बातों पर ध्यान दो। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है, कौन सी तीन बातें? सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। इन तीन बातों से में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई न दे। साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हमारे हल्दर भाई, अच्छा, और हमारे निरंजन भाई आए हैं, मम्मा की याद का एक बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे। हल्दर भाई भी आए, मैं इनको माइक दो। नीचे भी कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ भी मुरली के बाद भोग लगना होगा या भी लग रहा होगा, फिर मम्मा की बातें सुनेंगे, फिर वहाँ भी सबको फल मिलना है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं इतने सारे भाई बहने शांतिवन से भाग भाग करके आए हैं। जो शांतिवन से आए हैं हाथ उठाए। अरे बाप रे, इतने सारे आ गए हैं। नीचे भी तो यही कार्यक्रम चल रहा है। चलो ठीक,
अम्बे ओ जगदम्बे मा अष्टभुजाधारी, मा अष्टभुजाधारी, अम्बे ओ जगदम्बे मा अष्टभुजाधारी, अम्बे वो जगदम्बे मा अष्टभुजाधारी। हमको याद आ रही है वो मीठी लोरी, हमको याद आ रही है वो मीठी लोरी, अम्बे वो जगदम्बे माँ अष्टभुजाधारी। ओ मम्मा मेरी मीठी लोरी तेरी, मुरलीधर की दीवानी मुरली की मस्तानी थी, मुरलीधर की दीवानी मुरली की मस्तानी थी, विद्या की देवी सरस्वती तू तो वरदानी थी, विद्या की देवी सरस्वती तू तो वरदानी थी, वरदाता भाग्य विधाता तेरा ही गुण गाता, वरदाता भाग्य विधाता तेरा ही गुण गाता, माँ कम धेनु गाती दुनिया सारी, माँ कम धेनु गाती दुनिया सारी, अम्बे वो जगदम्बे माँ अष्टभुजाधारी। ओ मम्मा मेरी मिठी लोई तेरी,
जून महीना जब जब आए माँ तेरी याद आए।
जून महीना जब जब आए माँ तेरी याद आए।
हम कितने बच्चे आए माँ को देखने पाए।
हम कितने बच्चे आए माँ को देखने पाए।
मेरी भी ये एहसास होता मीठी माँ की ममता।
फिर भी एहसास होता मीठी माँ की ममता।
साथ का अनुभव कराता मीठी लोरी।
साथ का अनुभव कराता मीठी लोरी।
अम्बे वो जगदम्बे माँ अष्टभुजाधारी। ओ मम्मा मेरी मीठी लोरी तेरी।
मुख पर सजी मधुर मुस्कान हाथों में ममता का साया।
मुख पर सजी मधुर मुस्कान हाथों में ममता का साया।
सद्गुण रूपी पुष्पों से जीवन को है महकाया।
सद्गुण रूपी पुष्पों से जीवन को है महकाया।
ब्रह्मा बाप के कदमों पर चलती रही माँ जीवन भर।
ब्रह्मा बाप के कदमों पर चलती रही माँ जीवन भर।
बाबा समान थी मो तू निरहंकारी।
बाबा समान थी ओ मम्मा निरहंकारी।
अम्बे वो जगदम्बे माँ अष्टभुजाधारी। अम्बे वो जगदम्बे माँ अष्टभुजाधारी।
हमको याद आ रही है वो मीठी लोरी।
हमको याद आ रही है वो मीठी लोरी।
अम्बे वो जगदम्बे माँ अष्टभुजाधारी। ओ मम्मा मेरी मीठी लोरी तेरी। ओ मम्मा मेरी मीठी लोरी तेरी। ओ मम्मा मेरी मीठी लोरी तेरी।
ओम शांति। आज हम सब के लिए कितना न प्यारा दिवस है। प्यारी माँ को कोई भी भूल नहीं सकता है। लौकिक में भी माँ की पालना, माँ का प्यार और माँ का जो संस्कार दिए होते हैं वह हर एक के जीवन का एक अंग बन जाता है। तो हमारी प्यारी माँ ने हमें क्या नहीं दिया। बहुत कुछ दिया, बहुत अनुभव कराए। आज हम एक एक ब्राह्मण कुल बच्चा बाबा के साथ प्यारी प्यारी मम्मा को याद करते हैं। और कई बच्चे सदा ये उलहना देते हैं हमने मम्मा को नहीं देखा है। लेकिन मम्मा तो आप सबको देखती है और मम्मा गुप्त रीति से हर एक बच्चे की पालना भी करती है। मैं नहीं समझती इस हॉल में दो या तीन को छोड़ करके जिन्होंने मम्मा को देखा हो। जिन्होंने मम्मा को देखा है कोई? बस दो हैं। और सभी मम्मा के संकल्पों की रचना है। हमारे जमुना प्रसाद भाई जो कि पांडव भवन में है वह भी प्यारे मम्मा की बहुत पालना ली हुई है। मम्मा के अंग संग रहने, बाबा और मम्मा के अंग संग रहने का उनको मौका मिला है। तो आप सभी भी मम्मा प्यारी माँ तो आप सबको बहुत याद करती हैं। तो आज हम सब मिलकर के वतन में जाएंगे, आप सबकी यादें तो क्या, आप खुद ही वतन में जाना और मम्मा से मिलन मनाना, और मम्मा भी आप सब से मिलेगी। बाबा और मम्मा को भोग स्वीकार कराएंगे, भोग के बाद आप सबको पांडव भवन के आंगन में, क्योंकि प्यारी मम्मा के दिवस मम्मा और बाबा को जो भोग स्वीकार कराया जाता है, फल का ही भोग स्वीकार कराते हैं और साथ में चार प्रकार की टोली होती है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि भोग की थाली में क्या क्या फल रखा है, वो आपकी जानकारी के लिए। अंगूर दो प्रकार के, एक है हरे और दूसरे हैं लाल अंगूर, और तीसरा आम। आम भी दो प्रकार के हैं, एप्पल, आड़ू, एवोकाडो, कच्चे बादाम और बबूकोशा, लीची, चेरी, अनानास, केला दो प्रकार का, बड़ा केला और छोटा केला जिसको इलची केला कहते हैं, अनार और प्लम्स, चीकू, खजूर और मौसमी। मामा बाबा के भोग में 15 प्रकार का फल और 4 प्रकार की टोली है, और आप सबको कितने प्रकार का मिलेगा, थाली आपके सामने आ चुकी है। पहले तो हम बाबा और मामा को भोग स्वीकार कराएंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको ये दिखा रहे हैं, और आप सबको किस प्रकार से पांडव भवन के, या भोग का संदेश पूरा होते ही सब जाएंगे पांडव भवन में, और धीरे धीरे कोई आवाज नहीं करेगा। बाबा के कमरे के पास एक लाइन होगी जिसमें मधुबन और हॉस्पिटल के सभी समर्पित भाई बहने होंगे, और दूसरी लाइन होगी इधर आंगन में जहाँ पहले बहनों की होगी, फिर उसके बाद भाइयों की लाइन, फिर समर्पित भाई बहनों के बाद फिर भाइयों की लाइन बाबा के कमरे के पास होगी। और जो भी आएंगे फल लेने के लिए, फल का पैकेट मिलेगा, थैली मिलेगी, और वो बिल्कुल साइलेंस से आवाज नहीं करेंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि शांतिवन से बहुत से भाई बहने आए हैं, आप सबको पक्का करा रहे हैं किसको भी नीचे के डाइनिंग हॉल में नाश्ता नहीं करना है, क्योंकि वहाँ जगह कम है, इसलिए सबको नाश्ता दोपहर का भोजन जो भी है ऊपर के डाइनिंग हॉल में करना है, और धीरे धीरे जाना है। वहाँ भी बैठने का स्थान बहुत छोटा है, क्योंकि चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सफाई काम चल रहा है, इसलिए सबको इस बात में सहयोग देना है। अगर थोड़ा टाइम लगता है, बाबा को याद करो, मम्मा के प्यार में खो जाओ। माँ तो हमेशा ही साहस रखती है और इंतजार करती है, आज देखेंगे कौन बैठ के इंतजार करता है, जल्दी जल्दी नहीं करता है, करना है ये ध्यान रखना है। अच्छा, पहले क्या है, आप सबको जो थैली में मिलने वाला आम और ये मौसमी, प्लम्स और ये लाल अंगूर, चेरी और ये लाल अंगूर, और ये इतना मम्मा के टाइम पर बहुत बड़ा अंगूर होता था, वैसा ही अंगूर आप सबको बड़ा बड़ा मिल रहा है, और ये लाल अंगूर, चीकू, आड़ू और केला, एक मिनट, केला दो प्रकार केला, और ये देखो खजूर, कच्ची खजूर, कच्ची खजूर है, और ये चार प्रकार के, दो नमकीन दो मीठा, कितना भरपूर, इसी में नाश्ता हो जाएगा, नाश्ता नाश्ते से भी ज्यादा फल आपको मिल रहा है, आप सारे दिन में ये खा सकते हैं। और अपने पास खाते हुए प्यारी प्यारी मम्मा की बहुत स्नेह भरी यादों में ही मम्मा की याद बाबा की याद में स्वीकार करेंगे, और कोई भी आवाज नहीं करेगा। अभी हम सभी एक मिनट प्यारी मम्मा की आवाज भी सुनना चाहेंगे। जिन्होंने मम्मा की आवाज नहीं सुनी है वो हाथ खड़ा करें, जिन्होंने मम्मा की आवाज सुनी हुई है, अच्छा बहुत है, तो दो लाइनें सुना दो, फिर उसके बाद भोग स्वीकार करें।
ओम शांति। अपने परम पूज्य बाप के द्वारा अभी कर्म की गति अर्थात कर्म अकर्म और विकर्म इसकी यथार्थ नॉलेज मिल रही है। ये भी एक समझने की बात है कि कर्म की नॉलेज सवाय परमात्मा के और कोई समझा भी नहीं सकता है। क्यों? कि मनुष्य जो है सभी मनुष्य आत्माएं कर्म के चक्कर में है, क्योंकि वो कर्मों की स्टेज में आने वाली हैं। हर आत्मा को अपने कर्म की स्टेज में आना ही है। गोल्डन सिल्वर कॉपर एंड आयरन सतो रजो तमो ये हर एक को पास करना है। सब आत्माओं को कोई भी हो, देवताएं भी देखो अभी तमो में है ना, सब सबकी आत्माएं अपनी स्टेजेस में पास होने की हैं। इसीलिए सभी आत्माएं जो कर्म के गति में सदगति फिर दुर्गति इस सभी चक्कर में आने वाली हैं, तो जो आने वाली हैं वो इसकी नॉलेज को जान नहीं सकते, उनके पास वो नॉलेज रह भी नहीं सकती है। तो ये भी समझने की बात है कि कर्म
अंबर के उस पार। बन जा बाबा की सच्ची लगन से, बन जा बाबा की तू गली कोहार, उड़ जा प्यारी वतन में नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के
याद आई। सभी बैठे रहे, अभी संदेश सुनना है। दीदी ने संदेश लाया है बाप दादा के पास जाकर के, तो थोड़ा देर सभी को बैठना है जरूर।
आज बहुत ही स्नेही दिवस पर प्यारी माँ के निमित्त सबकी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते क्या देखती हूँ, एक तरफ बहुत सुंदर डेकोरेशन थी, कहाँ फूलों की मालाएं, कहाँ पर अलग अलग प्रकार के बिजली से चमकते हुए गुलदस्ते, कहाँ पर डायमंड की मालाएं, बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। और उन सब डायमंड की रेस से वातावरण बहुत ही दिल को छू लेने वाला और एक बहुत मधुर धुन की आवाज आ रही थी, लेकिन मम्मा बाबा कहाँ हैं? मैं चारों तरफ देख रही थी। कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ कि आकाश की ओर एक बहुत जगमगाता हुआ, चारों तरफ लाइट से चमकता हुआ पुष्प विमान चारों तरफ घूम रहा है और उस पुष्प विमान से एक तरफ तो फूलों की पत्तियां गिर रही थी, दूसरी तरफ कहां पर गोल्डन पुष्पों की पत्तियां थी, कहां पर हीरे मोती और कहां पर ब्लेसिंग की तरह से गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। और बहुत से लोग खड़े हैं, कोई ब्लेसिंग ले रहा है, कोई गोल्डन पत्तियों को कलेक्ट कर रहा है, कोई हाथ जोड़ के खड़ा है ऐसे कि ईष्ट ने मेरी पुकार सुन ली है और अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा और मम्मा जैसे उस स्थान पर पहुंचे जहां पर बहुत सुंदर डेकोरेशन थी और मधुर आवाज म्यूजिक के जैसे प्यार भरे गीत के मन की उद्गार के जो आवाज आ रही थी, जैसे वहां पहुंचे तो मम्मा तो कुछ सेकंड के लिए इतना प्यार में खो गई और मम्मा उस धुन की सुन करके मम्मा की आंखों में जैसे स्नेह के मोती दिखाई दे रहे थे और बाबा ये दृश्य देख करके मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने मेरी ओर देखा और कहा, बच्ची देखा, बच्चों और माँ का प्यार ये कभी भी टूट नहीं सकता है। माँ कहाँ भी चली जाए बच्चे माँ को नहीं भूल सकते और माँ बच्चों को नहीं भूल सकती है, इसलिए ये माँ बीच बीच में बच्चों के पास जाकर के बच्चों को विशेष अनुभव और वो प्यार का रिटर्न देती रहती है। तो मैंने कहा, बाबा आज आप कहाँ गए थे, मम्मा को कहाँ ले गए थे? बाबा ने कहा, आज का दिन वरदानी दिवस है, भगत और कोई भी मनुष्य आत्माएं जाने या अनजाने प्यारी माँ को भिन्न भिन्न रूपों से याद करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कोई वरदान मांग रहा है, कोई कृपा दृष्टि मांग रहा है, कोई अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहा है, तो आज के दिन उनको जैसे कि अचानक लॉटरी मिल जाती है और वो सब अपने आप को बहुत धन्य महसूस करते हैं। तो बाबा ने कहा आज मम्मा और बाबा ने माँ को सारे विश्व का चक्कर लगाया, भक्तों का साक्षात्कार कराया, पुकारने वालों का साक्षात्कार कराया, इसके साथ साथ हमारी दुनिया कैसी होगी उसके लिए तीन प्रकार की बातें विशेष दिखाया। एक तो साइंस अपने प्रगति के द्वारा सतयुगी दुनिया की तैयारी कितना फास्ट कर रही है, फिर प्रकृति जो है वो मम्मा को देखते हुए बाबा को देखते हुए झुक करके पुकार रही थी, अब हम बहुत वो थक चुके हैं, हमें जल्दी परिवर्तन चाहिए, और तीसरी तरफ कैसे परिवर्तन का कार्य चल रहा है वो माँ को दिखाया। और मम्मा तो बहुत प्यारी सी मुस्कान सुनते हुए खड़ी थी, तो मैंने कहा मम्मा आज के दिन तो हर एक बच्चा अपने मन की भावनाएं प्रस्तुत कर रहा है, तो बाबा क्या किया चुपके से छिप गए और मैं और मम्मा रहे। तो मैंने कहा मम्मा सारे याद कर रहे हैं, मम्मा मुस्कुराती हैं, वो याद कर रहे हैं या मम्मा याद करती है, इनको भूल जाता है कि माँ कैसे इनको अपनी गोदी में बिठा करके और ऐसे प्यार के झूले से और मधुर मुस्कान से बाबा के साथ का अनुभव कराती है। बच्चे बीच बीच में ढीले हो जाते हैं और फिर क्या हुआ, मम्मा ऐसी करती हाथ तो कहती आओ मेरे बच्चे, लेकिन मम्मा के साथ सब एडवांस पार्टी की दादियां थी और सब दादियों ने वरिष्ठ दादाओं ने मम्मा को घेर लिया और चारों तरफ सर्कल बना के बीच में मम्मा, और मम्मा उनके स्नेह भरे मुस्कान और एक एंजेलिक डांस को देख करके मम्मा भी सबका हाथ पकड़ करके उनको जैसे ऊपर की ओर ले जा रही थी। और मम्मा कहती हैं ये बाबा के यज्ञ के आधार मुहूर्त जो अपना कार्य संपन्न करने में दिन रात लगे हुए हैं। और फिर बच्चों को देख करके मम्मा कहती हैं ये सब सहयोगी भुजाएं हैं और ये भुजाएं सदा मजबूत रहें, कभी कभी ये भुजाएं ढीली हो जाती हैं तो कार्य को जो संपन्न करना है उसके अंदर कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है। फिर मम्मा सबको ऐसे हाथ में दोनों हाथ से सबको इतने अच्छे अच्छे अनुभव करा रही थी, सब एंजल की तरह है, और ऊपर से गोल्डन लाइट की गोल्डन पुष्पों की सबके ऊपर वर्षा हो रही थी। मम्मा ने कहा जब भी बच्चों को मिलना है माँ तो सदा बच्चों के साथ है, वतन में आए और माँ से मिले। फिर इतने में बाबा आए और मुस्कुरा रहे थे, बाबा ने कहा आज बाबा भी बच्चों और माँ के मिलन को देख करके बहुत खुश हो रहे थे। फिर बाबा को मैंने मम्मा को बताया कि आज सबने आपके लिए याद प्यार के साथ फल का भोग लेकर आई हूँ, बाबा को दिखाया और बाबा ने अपने हाथ से मम्मा को खिलाया और फिर मम्मा को कहा कि सब बच्चों को खिलाओ। तो मम्मा ने कहा बाबा आप खिलाओ, तो बाबा ने कहा अच्छा मैं भोग खिलाता हूँ मम्मा सबको, आज का दिन है गिफ्ट का दिन है, मम्मा को कहा कि सबको एक गिफ्ट दो। तो मम्मा मुस्कुरा रही थी, देखती मैं क्या देखती मम्मा के हाथ में एक कंगन था, तो मम्मा ने कंगन दिखाया, कहा ये सब बच्चों के लिए कंगन है। वो कंगन के एक तरफ बहुत सुंदर चमकता हुआ हीरा दिखाई दे रहा था, उस हीरे पर लिखा हुआ था सर्व मर्यादों से संपन्न। और दूसरी तरफ अलग प्रकार का हीरा था जिसमें लिखा हुआ था सफाई और तपस्या और साइलेंस, सफाई तपस्या और साइलेंस। और तीसरी तरफ हीरे पर लिखा हुआ था सफल करो, सफलता मूर्त बनो। और जो चौथा ऊपर का था वो लिखा हुआ था श्री मत का सदा पालन करना। तो बाबा ने जैसे वो कंगन देखा तो बहुत खुश हुए। बाबा ने कहा मम्मा को इसका रहस्य तो बताओ। मम्मा ने बाबा को कहा आप ही बताएं। तो बाबा ने कहा कि मम्मा ये चाहती हैं कि सब बच्चे सर्व मर्यादाओं में संपन्न रहे, क्योंकि अभी माया का जो रूप है वो मर्यादाओं में कभी कभी ढीला कर देती। दूसरा बात बाबा ने कही कि मम्मा जैसे सच्चाई सफाई और त्यागी तपस्वी रही, ऐसी ही बच्चों को दिल से साफ और मन में सदा बाप के साथ सच्चा कनेक्शन और त्यागी और तपस्वी बनना है, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है अगर तपस्वी नहीं बनेंगे तो कई प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो उलझनों में डाल देंगे। तो तीसरी बात था सफल करो, सफलता मूर्त बनो। तो बाबा ने कहा समय क्या है, कितना बचा है, अचानक कुछ भी होगा और उस समय सफल नहीं कर पाएंगे। अपने संकल्पों को भी इकोनॉमिकल बनाओ और उसको सफल करो, और जो कुछ भी है सफल करते जाओ, नहीं तो अचानक सब कुछ ऐसे ही चला जाएगा। करना है करना है, सोचते रहेंगे कर नहीं पाएंगे। फिर बाबा ने चौथी बात जो कही, मम्मा को कहा कि आप कहो। मम्मा मुस्कुराती रही। मम्मा ने कहा बस सदा, जैसे स्लोगन था मम्मा का, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो बाबा ने उसको कहा मीन्स श्री मत का पालन करना। श्री मत में अभी भी कई बच्चे कई बातें मिक्स कर देते हैं, तो जो ट्रस्टीशिप की जो भावना है उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो मम्मा ने जैसे स्लोगन आता है हुक्म ही हुक्म चला रहा है, बाबा का कार्य है बाबा करा रहा है। फिर मम्मा ने सबको कंगन दिया, बाबा ने सबको अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया। तो बाबा ने कहा जैसे माँ ने कभी कोई बात में संकल्प नहीं किया, बाबा का कार्य है, हर कार्य के अंदर कोई विशेष राज है, इसलिए साक्षी होकर के ड्रामा के हर राज को साक्षी होकर के देखते हुए हल्के होकर के चले, तो हर राज हर सफलता सामने है और बाप समान और मम्मा के साथ के अनुभव भी करते रहेंगे। सबको याद दिया। ओम शांति।